તારીખ 27/2/1997 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 833 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 173 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
દેહ સે જૈસા વસ્ત્ર કા સંબંધ હૈ વૈસા આત્મા સે દેહ કા સંબંધ जिन्होंने यथार्थ तथ्य देखा है. ज्ञान से तलवार का जैसा संबंध है वैसा देह से आत्मा का संबंध जिन्होंने देखा है. अवधस्पृष्ट आत्मा का जिन्होंने अनुभव किया है उन महापुरुषों को जीवन और मरण दोनों समान है. ऊपर के पैराग्राफ में द्वंद्व लिए थे. एक तो लिया था प्रिय अप्रिय का, दूसरा लिया था शत्रु मित्र का, तीसरा मान अपमान का लिया था, चौथा लाभ लाभ का लिया था, पांचवा हर्ष शोक का लिया था और छठा द्वंद्व लिया था जन्म मृत्यु का. वो छों में सबसे बड़ा टेंशन आता है मरण में. प्रिय अप्रिय मान अपमान लाभ लाभ में उतना नहीं आता जितना मृत्यु की समस्या है, क्योंकि मृत्यु के का प्रसंग एक ऐसा प्रसंग अनुभव में आता है संसार में भ्रांतिगत रूप से कि मेरा सर्वनाश हो गया. उसमें सर्वनाश नहीं है, वो पांचों में थोड़ा बहुत अधूरा नुकसान लगता है, उसमें तो संपूर्ण नाश अनुभव में आता है. तो उस और जिसको मृत्यु का भय नहीं उसको फिर किसी दूसरी चीज का भय रहेगा नहीं. तो यहां किसकी बात चलती है कि जिसको देहात्म बुद्धि चली गई है, जिसको देहात्म बुद्धि बिल्कुल चली गई है. देह है वो आत्मा है ही नहीं. वो शरीर से वस्त्र का जैसा संबंध है, म्यान से तलवार का अलग अलग भिन्न भिन्न संबंध है, वैसा ही संबंध है. देह छूट जाएगा तो देह छूटने से मेरे में से एक गुण भी छूटने वाला नहीं है और मेरे क्षेत्र में से एक प्रदेश भी कम होने वाला नहीं है. और मेरी जो संपत्ति है वो तो गुण संपत्ति है. जो मेरी संपत्ति उतनी की उतनी वैसे की वैसे रहती है फिर मुझे चिंता कहाँ की. सुगानी जी एक पत्र में लिखते हैं कि जब मेरी परिणति अनंत शांति के पिंड के साथ रहती है फिर चिंता काहे की. ज्ञानी क्या अनुभव करता है कि मेरे में जो अनंत सुख शांति भरपूर है वो तो यूं की यूं है. मेरे को यहाँ से सुख शांति मिलती है और वो पूरी इंटैक्ट वैसे के वैसे रहती है. फिर बाहर में कुछ भी हो जाए हमें क्या लेना देना. बाहर में कुछ भी हो गए हमको कोई फर्क तो पड़ता नहीं. हमारी सुख शांति के भंडार में संपत्ति में कोई फर्क पड़ता नहीं है. तो उनका लक्ष्य उनकी परिणति वहीं रहती है. फिर बाहर में जो कुछ होता है वो अपने बस का तो होता नहीं. ये तो कर्म के उदय के अनुसार जो होएगा तो होएगा. कि किसी अपने या दूसरे किसी के भाव के वश वो स्थिति तो है ही नहीं. एक तो परिस्थिति वो है कि इसकी स्थिति किसी के हाथ की बात नहीं है, अपने हाथ की भी बात नहीं. दूसरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी उलट फेर हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चिंता किस बात की। इसलिए विश्व में वज्रपात हो जाए तो भी ज्ञानी अंदर से हिलते नहीं, बाहर से कुछ दिखता है अंदर से तो हिलते ही नहीं। निर्जरा अधिकार में कुंदकुंद आचार्य ने वो बात लिया कि वज्रपात हो जाए, मैंने सबसे बड़ी उथल पाथल हो जाए। और पुरुषार्थ बढ़ाते हैं या बढ़ जाता है सहज उसका, ऐसी परिस्थिति में ज्ञानी का पुरुषार्थ सहज बढ़ जाता है। और वो बात जिसको देखने में आती है कि ऐसी परिस्थिति में तो इनका पुरुषार्थ बढ़ता है, तो उनको अधिक भक्ति और अधिक स्नेह आता है। वो बात 467 में अपने पढ़ी कि ऐसी परिस्थिति में जब वास्तविकता नजर आती है तो और भक्ति और प्रेम आता है, ये बात बनती है। तो कहते हैं कि जिन्होंने वस्त्र का संबंध देह से वस्त्र का संबंध है, वैसा आत्मा से देह का संबंध जिन्होंने यथार्थ देखा है। हमारे रत्नकरंड श्रावकाचार्य हैं जो भगवान उमा स्वामी की रचना है, नहीं भगवान समन भद्र स्वामी ने लिखा है। रत्नकरंड श्रावकाचार्य में एक अधिकार लिखा है मृत्यु महोत्सव। संसार में तो ऐसा शब्द भी किसी ने सुना नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु ये अशुभ प्रसंग गिना जाता है। इसका समाचार का हेडिंग भी लिखने में आता है अशुभ समाचार। आगे आ जा, जगह है। तो उल्टी बात है, संसार से मोक्ष मार्गी की बात बिल्कुल उल्टी ही है। उल्टी बात होने से ये बात सुनने में नहीं आती संसार में, मृत्यु को कोई महोत्सव बोला जाता है क्या? उत्सव नहीं, महाउत्सव। देखो हाँ, बड़े बड़े उत्सव को महाउत्सव कहते हैं, महोत्सव कहते हैं। महाउत्सव की संधि महोत्सव हो जाता है, वो का वो हो जाता है। क्यों? कि ये अधिक हर्ष का प्रसंग है। क्यों? कि अधिक निर्जरा और अधिक कमाई उस प्रसंग में होती है ज्ञानी को। पुरुषार्थ सहज बढ़ जाता है और उस वक्त वो अधिक निर्जरा करते हैं और अधिक उत्साहित होते हैं अपने पुरुषार्थ में, और अधिक शांति होती है, अधिक शुद्धि बढ़ जाती है, और ये अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। कोई ज्ञानी तो ऐसे होते हैं कि मालूम पड़ जाता है शारीरिक परिस्थिति, वेदना आदि की जो परिस्थिति है, जो शरीर प्रकृति से विरुद्ध होती है, तो मालूम पड़ जाता है कि शरीर प्रकृति ऐसी नहीं है, विरुद्ध चलता है सब। तो अपने पुरुषार्थ में वो एकदम जागृत हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो उतना पुरुषार्थ बढ़ाते हैं, उतना बढ़ाते हैं कि प्राण छूटने के समय में वो निर्विकल्प उपयोग में आ जाते हैं, निर्विकल्प उपयोग में प्राण छोड़ते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो उस वक्त इतनी निर्जरा होती है जितनी सारे जीवन में नहीं हुई हो। सारी जिंदगी में ज्ञानी ने निर्जरा नहीं की, वो उतनी निर्जरा वो प्राण छूटने के काल में उनको होती है। तो ये महोत्सव है क्या नहीं है बताइए? आनंद बढ़ता है। महोत्सव में आपको क्या होता है, आनंद होता है, उत्सव महोत्सव में आनंद आता है, उनका आनंद बढ़ जाता है, आत्मानंद बढ़ता है, इससे बढ़कर क्या चाहिए? वो समाधि मरण है। समाधि दशा में देह का छूटना, उसको समाधि मरण कहते हैं। मरण शब्द रूढ़िवाचक है, वास्तव में मृत्यु जैसी कोई चीज है ही नहीं जगत में, क्योंकि आत्मा मरता नहीं और परमाणु भी मरता नहीं। देह के परमाणु बिखरते हैं और अलग अलग बढ़ जाते हैं, अपने अपने जो पर्याय के क्रम है उस अनुसार वो बढ़ जाते हैं। एक भी परमाणु का नाश तो होता नहीं, आत्मा का नाश होता नहीं। तो मृत्यु तो नाश का नाम है, लेकिन बिल्कुल झूठा, वो नाम ही झूठा है। क्यों? कि ना आत्मा का नाश होता है न परमाणु का होता है। संयोग था उसका, वियोग तो होने वाला ही है। संयोग तो वियोग के साथ ही जन्म लेता है। गुरुदेव कहते थे कि माँ बच्चे को जन्म देती है और अपने गोद में लेती हूँ सबसे पहले, उसके पहले अनित्यता ने उसको गोद में ले लिया है इस बच्चे को। तो बच्चा पैदा वो नित्य रहने वाला नहीं है उसके संयोग में, तो पहले ही जन्मते ही अनित्यता की गोद में आ चुका है, बाद वो इसकी माँ की गोद में जाएगा। इतनी अनित्यता पहले से ही प्रथम ही स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर इसका स्वीकार हो गया है तो कोई दुख नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। स्वीकार हो गया है तो, और मैं मर जाऊंगा ये भ्रम ही मृत्यु तुल्य दुख को उत्पन्न कर देता है कि वाकई मर जाता है कोई, बाकी मरता नहीं है कोई, लेकिन मृत्यु तुल्य दुख भोग लेता है जी। तो इस मार्ग की सबसे बड़ी कोई देन है, उपलब्धि है, तो वो है कि किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, निशंकता से निर्भयता आती है। निशंक है अपने स्वरूप में, मैं मरने वाला नहीं, मेरी गुण संपत्ति में से कुछ कमी होने वाली नहीं, मेरे को कोई बाधा पहुंचा सकता नहीं, कोई पीड़ा कर सकता नहीं, कोई दुख पहुंचा सकता नहीं, कोई तकलीफ दे सकता नहीं। भाई सभी प्रकार का भय खत्म, सबसे बड़ी बात वो है। और संसार में कितनी भी संपत्ति मिले, कितनी भी सत्ता मिले, वो इंदिरा जी ने वो कटोकटी इमरजेंसी अप्लाई किया तो उसका खुद का खतरा हो गया। क्या हुआ? इमरजेंसी खुद को लागू हो गई। सुना था कि 2000 लोग इनके मकान के आगे पीछे 3 किलोमीटर में इसकी सुरक्षा के लिए रुके गए हैं। मैंने रोजाना लाखों रुपयों का खर्च है, फिर भी बची नहीं, इतनी सत्ता होने के बावजूद भी और 3000 लोगों की सुरक्षा होने के बावजूद भी वो बची नहीं। उनको भय है और ज्ञानी को कोई भय नहीं है, ज्ञानी को कोई भय नहीं है। ये सबसे बड़ी देन है। म्यान से तलवार का जैसा संबंध है, वैसा देह से आत्मा का संबंध जिन्होंने देखा है, देखा है माने सोचा है, ऐसा नहीं है, देखा है, प्रत्यक्ष किया है, देह भिन्न है आत्मा भिन्न है। वैसे तो आत्मा देह से भिन्न है तो सर्व से भिन्न है, क्योंकि समीप में समीप अटैचमेंट कोई है तो देह का है, तो देह से भिन्न है इसका मतलब सर्व से भिन्न है। तो मैं सर्व से सर्व प्रकार से भिन्न ज्ञानमयी आत्मा हूं, ये मेरा स्वरूप है। ज्ञान मुझे प्रतिक्षण अनुभव में आता है और वो अपना स्वरूप है, अपना रूप है। देह परमाणु की रचना है, वो स्वयं अपने गुण धर्म के अनुसार परिणमन करता रहता है, आत्मा के विकल्प के अनुसार वो परिणमन नहीं करता। अगर ऐसा होता तो एक बाल को कोई सफेद होने देता नहीं, लेकिन वो चलती नहीं है, किसी की चलती नहीं है उसमें। ऐसा संबंध जिन्होंने देखा है, अवधिस्पृष्ट आत्मा का जिन्होंने अनुभव किया है, ये शब्द है समय सार की 14 और 15 गाथा में कुंदकुंड आचार्य ने ये अवधिस्पृष्ट शब्द का प्रयोग किया है। अवधिस्पृष्ट अनन्य अनियत नियत और असंयुक्त ऐसा आत्मस्वरूप है। अवधिस्पृष्ट मैंने कर्म से बंधा हुआ भी नहीं है और कर्म से स्पर्शित किया हुआ भी नहीं है। देह है वो नो कर्म है और नानावर्णी दर्शना वर्णी आदि प्रकृति वो कर्म है, न देह से बंधा हुआ है न नानावर्णी आदि कर्म से बंधा हुआ है। आत्मा को कोई बांध सकता नहीं, लोग ये कहते हैं कि जैन कर्मवादी है, क्योंकि जैन शास्त्रों में कर्म की जितनी बातें हैं उतनी बातें किसी धर्म के संप्रदाय में और शास्त्र में नहीं है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि कर्मवादी हैं। वास्तव में जैन स्वभाववादी है, कर्मवादी नहीं है, स्वभाववादी है। और वो स्वभाव कैसा है कि कर्म से मैं भिन्न हूं, ऐसा है मेरा स्वभाव, स्वरूप कर्म से भिन्न है, मेरी स्वानुभूति भी कर्म से भिन्न है। वो तो मुक्त हो जाए तब तो, सिद्धालय में निर्वाण पद में विराजमान हो जाए तब तो, कि नहीं वर्तमान में, वर्तमान में ही मैं मुक्त ही हूँ, मूल स्वरूप से। अवस्था में बंधन है, संबंध है, वो अवस्था में है, लेकिन त्रिकालीय स्वरूप में उसी अवस्था का अभाव है। मूल स्वरूप में वो बंधन वाली अवस्था का अभाव है। अपनत्व बंधन वाली अवस्था में स्वीकार किया गया तो जीव अपने को बंधन युक्त महसूस करता है, और अपने त्रिकालीय स्वभाव में अपनत्व कर लिया और स्वभाव का स्वीकार कर लिया तो ये अवस्था का बंधन होने के बावजूद भी अपने को मुक्त रूप से अनुभव करता है। कृपालु देव लिखते हैं 680 पत्र में कि हम परमात्मा हुए हैं, क्या लिखे हैं निकालो, इसमें ही है। नीचे नीचे से चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति से अधिक क्या कहें। इस विषम काल में परम शांति के धाम रूप हम क्या है, परम शांति के धाम रूप हम दूसरे श्री राम है अथवा दूसरे श्री महावीर ही है क्योंकि हम परमात्मा स्वरूप हुए हैं। देखो क्या लिखा है, और यह अंतर अनुभव है हमारा, यह अंतर अनुभव परमात्मा स्वरूप की मान्यता के अभिमान से उद्भूत नहीं हुआ लिखा है, वाकई अनुभव है, अभिमान नहीं है, ये अभिमान नहीं है, वास्तविकता है, ऐसा कहते हैं। अभिमान तो इसको बोला जाता है कि जो नहीं है उसको वैसा माने, उसको अभिमान कहते हैं। कि लखपति हो मान ले करोड़पति और ऐसा अभिमान करे, तो वो अभिमान है। लेकिन हमारा स्वरूप तो परम स्वरूप परमात्मा स्वरूप है ही, और उस रूप हमको अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष तौर से अनुभव करते हैं हमारा परमात्मा स्वरूप का। तो हम परमात्मा है कि नहीं है, कि है, इसमें अभिमान की क्या बात है। तो वो परमात्मा स्वरूप हुए हैं ये अनुभव से कहते हैं, अनुभव प्रधान बात है। भले ही दशा में 13वां गुण स्थान नहीं हुआ हो, 14वां गुण स्थान नहीं हुआ हो, सिद्ध पद नहीं प्रकट हुआ हो, तो भी एक न्याय से, जो अनुभव प्रधान न्याय है, जिसमें स्वानुभूति की प्रधानता है, उससे खुद स्वयं को परमात्मा रूप में अनुभव करता है। मूल स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, और अनुभव ही उसका हुआ, अनुचित क्या हुआ वो बताइए, उसमें कौन सी बात अनुचित है? उसमें किसी कोई भी बात अनुचित नहीं है। तो ज्ञानी को उस दृष्टि से, उस परिस्थिति से पहचानने वाले को परमेश्वर बुद्धि आएगी। कि परमेश्वर बुद्धि कोई कल्पना नहीं है, एक वास्तविकता का स्वीकार है। और जिसको परमेश्वर बुद्धि आती है वो मुमुक्षु तीर जाता है, उसको लॉटरी लग गई निर्वाण पद की, वो निर्वाण पद का अधिकारी हो गया। क्योंकि उसकी योग्यता के बिना वहां तक उसकी पहुंच नहीं, तो उनको वहां तक वो पहचाने, तो इस योग्यता पर कृपालु देव ने एक रजिस्ट्रेशन मार्क लगा दिया कि निर्वाण पद का अधिकारी है, उसको पहला संकेत की प्राप्ति है। वो जीव को भी स्वच्छंद नहीं करेगा, जो परिभ्रमण का मूल कारण है स्वच्छंद, वो नहीं करेगा, वो अपने अभिप्राय का आग्रह नहीं रखेगा। स्वच्छंद मत आग्रह तजी वरते सदगुरु लक्ष्य, सत्रवीं गाथा आत्मसिद्धि शास्त्र। तो श्री गुरु जो कहेगा उसकी आज्ञा में रह जाएगा, आप जो कहें हमको मंजूर है। दिन को रात कहे तो भी मंजूर है, रात को दिन कहे तो भी मंजूर है, सूर्य को चंद्र कहे तो भी मंजूर है, चंद्र को सूर्य कहे तो भी मंजूर है, प्रकाश को अंधेरा कहे तो भी मंजूर है। ऐसी बात है, वर्ते सदगुरु लक्ष्य समकित तेने भाख्य कारण गणी प्रत्यक्ष। ज्ञानी के ज्ञान में प्रत्यक्ष तौर से वो समकित दिखता है मां, कि इस जीव को समकित हो गया, जिसको समकित हो गया उसका निर्वाण अवश्य अवश्य होने वाला है ही, ये तो गारंटेड बात है, बात खत्म हो गई। तो कृपालु देव ने मुमुक्षु की भूमिका में कोई ऐसी चीज बतला दी है, दर्शाई है, कि उसको उत्साह बढ़ जाए। क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि ये निर्विकल्प अनुभव होना, स्वरूप में लीन हो जाना, ये तो कोई योगियों का काम होगा, तब समकित होता है, सम्यक दर्शन कब होता है, स्वरूप लीनता के काल में, और ऐसा काम तो योगी लोग ही कर सकते हैं ज्ञान ध्यान में, हम रहे सामान्य लोग, हमारी बारी कब आएगी? तो तुम खड़े रह जाओ क्यों में, आ जाओ तुम क्यों में। तो क्यों में आगे पहले स्वरूप की पहचान वाला खड़ा है, इसके पीछे सत्पुरुष की पहचान वाला खड़ा है। सत्पुरुष की पहचान हो गई, वो सम्यक दर्शन की क्यों में आ गया, बस उसका नंबर लगने वाला है और उसका छुटकारा नियम से अवश्य होने वाला है, ये गारंटी दिया है। तो कहते हैं कि अवध स्पृष्ट आत्मा जिन्होंने अनुभव किया है चतुर्थ गुण स्थान में, बाहर की स्थिति गृहस्थाश्रम में है तो भी जिन्होंने अंतर अनुभव किया है कि मेरा स्वरूप में कोई कर्म का बंधन और स्पर्श है नहीं, अनादि अनंत जैसा है वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है, जैसा सिद्ध परमात्मा है वैसा ही मैं हूं, तो साक्षात सिद्ध पद स्वरूप स्वयं का अनुभव, ये अवध स्पृष्ट आत्मा का अनुभव है। अबद्ध मैंने नहीं बंधा हुआ, अ मैंने नहीं, अ मैंने नहीं, तो नहीं के रूप में अ शब्द का प्रयोग बहुत है अपनी भाषा में, अपक्षपात और मैंने नहीं, दोनों में लेना, अबद्ध और अस्पृष्ट, बंधा हुआ भी नहीं और स्पर्शित किया हुआ मैं, कर्म ने मुझे स्पर्श भी नहीं किया है, मुझे कोई स्पर्श करे तब तो उसकी असर होवे ना, मुझे मेरे स्वरूप में कर्म की असर होने का कोई सवाल ही नहीं है। कर्म क्या, कोई भी प्रकार की कोई असर कोई मूल स्वरूप में नहीं हो सकते, किसी की पहुंच नहीं है वहां, किसी की पहुंच नहीं है, ऐसा सुरक्षित आत्मस्वरूप है, उसके लिए बॉडी गार्ड की भी जरूरत नहीं है, स्वयं सुरक्षित है अपने आप, उसकी सुरक्षा के लिए कोई अरेंजमेंट कोई मैनेजमेंट कोई कुछ नहीं चाहिए, स्वयं सुरक्षित है, फिर भाई किस बात का वही होता ही नहीं। कहीं को ये भाई लगता है कि ऐसे ही मर जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे तो मर जाएंगे तो क्या होगा, तो देखो यहाँ अपना काम चालू करो, अपना आत्मकल्याण का कार्य जो है इसकी प्रक्रिया प्रोसेस यहाँ से चालू कर दो, और एक ऐसा निश्चय रखो कि कभी भी आयु पूरा हो जाए तो ये मनुष्य भोग पूरा हो जाएगा। तो कहीं भी हम जाएंगे हमारा कार्य चालू रखेंगे, ये निश्चय रखो, ये निर्धार कर लो कि कहीं भी जाना तो होगा, ये मनुष्य भव कोई परमानेंट पोजीशन है ही नहीं, टेम्पररी है और अनिश्चित भी है, इसका कोई नियम नहीं है कि बचपन में मरे या नहीं मरे, जवानी में मरे या नहीं मरे, बुढ़ापन में ही मरे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी कभी भी आयु पूरा कर लेता है, क्योंकि वो तो पूर्व कर्म का स्थिति निश्चित हुई है, पूर्व कर्म की स्थिति वो निश्चित हो चुकी है, तो उसमें कोई एक सेकंड का एक समय का वृद्धि हानि होने की कोई परिस्थिति नहीं होती, उदयमान हो गया है इसलिए, उदयमान कर्म में की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें एक नया निर्धार कर लेना है कि हम यहाँ हमारा काम करते हैं कर रहे हैं और कहीं भी जाएंगे सर्वत्र कोई क्षेत्र से हमारा मोह नहीं है, इस देह से भी हमारा मोह नहीं है, इस क्षेत्र से भी हमारा मोह नहीं है, इस मकान से भी नहीं, इस गांव से भी नहीं, इस देश से नहीं, देश से भी नहीं, इस समाज से भी नहीं, किसी से इस कुटुंब से किसी से भी हमारा कोई संबंध नहीं, जहाँ भी जाएंगे हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हम हमारा आत्मकल्याण का कार्य करते रहेंगे, फिर हमको मनुष्य भव की भी चिंता नहीं, देश छूटने की भी चिंता नहीं है, जाओ निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि हमारी आत्मा अवध स्पष्ट है, उसमें कोई कर्म का संबंध, ये सब कर्म का संबंध है, कर्म प्रसंग है, आत्म प्रसंग है ही नहीं। कर्म प्रसंग है वो आत्म प्रसंग नहीं, आत्म प्रसंग है वो कर्म प्रसंग नहीं, और कर्म से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। वैसे संसार में भी जिससे संबंध छोड़ देते हैं, फिर सामने नहीं देखते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि हमारा संबंध कोई नहीं रहा आजकल, क्या हुआ हमको कोई सब लेना देना है नहीं, ठीक हुआ तो भी हमको लेना देना, ठीक हुआ तो हमको लेना देना है। ऐसा पूर्व कर्म का हिसाब स्वानुभव में चुकतू कर दिया, क्या कर दिया, चुकतू कर दिया, हमको कोई लेना देना है। जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है उन महत्पुरुषों को जीवन और मरण दोनों समान है, उनको तो जीवन मरण दोनों समान है। क्यों कि जीवन चालू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी लेना देना है ही नहीं। क्यों इसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ये ट्रैफिक आता जाता है क्या फर्क पड़ता है, अपन अपने घर में बैठे हैं, ऐसे ही निज स्वभाव घर में जो बैठ गए उनको बाहर के ट्रैफिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर का भी दर्शन होवे तो भी फर्क पड़ता नहीं है, किसी से फर्क नहीं पड़ता, सब ज्ञान के गए हैं। अब लिखते हैं, जिस अचिंत्य द्रव्य की शुद्ध चीति स्वरूप कांति परम प्रकट होकर अचिंत्य करती है, वह अचिंत्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया उसका अपार उपकार है। ये उपकार बुद्धि का वचनामृत है। उपकार बुद्धि ज्ञानी को आए बिना नहीं रहते। ज्ञानी क्या, मुनियों को भी आए बिना नहीं रहते। ऐसी एक परिस्थिति है कि उपकार बुद्धि आए बिना नहीं रहते, और वो उपकार कितना बताया कि जिसकी कोई सीमा है ही नहीं। क्यों कि जो निर्वाण पद में होने वाला सुख है इसकी भी कोई सीमा नहीं, जो आत्म लाभ हुआ उसकी कोई सीमा तो है ही नहीं, इतना सुख होगा तो उपकार भी अमाप है, ऐसा बोल दिया है। उपकार में क्या किया कि आत्मस्वरूप को प्रकाशित किया है, बता दिया कि तुम्हारा आत्मस्वरूप ऐसा है, वास्तव में सत्पुरुष के भक्ति का ये वचनामृत है, लेकिन सत्पुरुष का श्रृंगार बहुत किया है, शोभा बहुत किया है, श्रृंगार से शोभा होती है ना, शोभा बहुत किया है कि जिसने मेरे पर अपार उपकार किया है वो सत्पुरुष कैसा है कि अचिंत्य द्रव्य की शुद्ध चीति स्वरूप कांति परम प्रकट होकर अचिंत्य करती है, वह अचिंत्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, ऐसा अपना स्वरूप दर्शाने वाला सत्पुरुष है। सत्पुरुष इतने सादा शब्द नहीं लिया है, इतना विशेषण लंबा चौड़ा दिया है, तो उसके पीछे दो वाक्य लिख दिया है, इतनी बड़ी बात है, जिसका उपकार मुझे हुआ है वो इतनी बड़ी बात है। द्रव्य भी अचिंत्य है, मेरा आत्मस्वरूप भी अचिंत्य है, और उसकी शोभा कांति माने शोभा, ये शुद्ध चैतन्य परिणति वो इसकी शोभा है। शुद्ध चैतन्य परिणति वो आत्मद्रव्य की शोभा है। कांति मैंने तेज, कांति मैंने तेज, आत्मा का तेज क्या है कि शुद्ध चैतन्य का अनुभूति, वही आत्मा का तेज है। जैसे सोने में हीरे में तेज होता है, वो पुद्गलात्मक होता है, यहाँ आत्मिक तेज की बात है। बताने के लिए शब्द नहीं है, वो तेज जो पुद्गल तेज है और आत्मा का तेज है, वास्तव में इसकी उपमा घटित नहीं होती। इसलिए आत्मा का तेज को अनुपम तेज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपम तेज है, उसकी उपमा दे नहीं सकते। किसी के किसके साथ दें? सूर्य चंद्र के साथ नहीं दे सकते। हाँ, चीटी 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 मैंने चैतन्य की प्रगट परिणति को चीटी कहते हैं।
अंतकरण नहीं लेना
है? नहीं, यह अंतकरण की बात नहीं है, यहाँ स्वरूप के शुद्ध अवस्था की बात है, स्वरूप की शुद्ध अवस्था की बात है। शुद्ध चीटी स्वरूप कांति मैंने तेज। अचिंत्य माने चिंतमन में नहीं समा सके ऐसा, कितना भी गहरा ऊंडा 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 चिंतमन करे कि मेरा आत्मा ऐसा है, मेरा आत्मा ऐसा है, उसमें आत्मा का समावेश नहीं है। क्यों? कि चीज ऐसी अचिंत्य है। चिंतमन से पार होकर के स्वानुभव की निर्विकल्प स्थिति में जो प्रत्यक्ष तौर से अनुभव गोचर होता है, इसलिए मन वाला चिंतमन की वहां पहुंच नहीं है। मन वाला चिंतमन की वहां पहुंच नहीं है। गोपाल देव अपने लिए लिखते हैं, अपने धन्य आराधना में वो सब बात लिया है कि आत्मा को जिस पदार्थ का, जिस स्वरूप का ज्ञान हुआ है वो मन नहीं जानता है। क्या बोलते हैं? वो मन नहीं जानता है। मेरा मन मेरे ज्ञान का अनुभव को नहीं समझता। दूसरे का मन क्या समझेगा? मेरा मन मेरे आत्मा के अनुभव को नहीं समझता। मुझे जो अनुभव हुआ है वो मन नहीं जानता, और मन जो कुछ जानता है, जितना भी जो कुछ जानता है, वो मेरी भाषा नहीं बोल सकते। जो वचन योग है उसमें वो बात नहीं आ सकती, और जो वचन में आती है बोलने में, वो लेखनी में नहीं आती। और तुम्हारे साथ हमारा पत्र व्यवहार हुआ है, तुमको क्या बताएं? तुमको जो बताते हैं वो तो थर्ड डिग्री वाली बात है, मूल चीज तो कहीं की कहीं रह जाती है। तुमको संकेत मिलता है, समझदार हो तो समझदार के लिए इशारा काफी है। इतनी सी बात है। ज्ञानो मन इंद्रिय साथे जोड़ायेलो क्षोभ संभाव, जेम पांच इंद्रिय ने छठ्ठू मन उद्गलात्मक पण छे अने भावात्मक पण छे। उद्गलात्मक को द्रव इंद्रिय कहते हैं, और जो भाव है उसको भाव इंद्रिय कहते हैं। छह द्रव इंद्रिय है और छह भाव इंद्रिय है। यहाँ भाव इंद्रिय की बात चलती है कि मन इंद्रिय के साथ जो ज्ञान का क्षोभ जुड़ता है, लगता है और विचार होता है। क्या होता है मन में? विचार, मनन, चिंतन, ये सब चलता है मन में। ये विचार, चिंतन, मनन मन में चलता है और ये आत्मा की विभाविक पर्याय है, ज्ञान की वैभाविक पर्याय है, उसको मन कहते हैं। विभाविक क्यों किया? ज्ञान होने के होने पर भी कि ज्ञान की स्वाभाविक पर्याय अंतर्मुख होती है और विभाविक पर्याय बहिर्मुख होती है। हाँ, आत्मा के ज्ञान की विभाविक पर्याय वो मन क्षोभ संभाव रूप है। मति ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का दो क्षोभ संभाव काम करता है। मति और श्रुत दोनों मन में उत्पन्न होता है, दोनों ज्ञान वो मन है। उस वक्त मन के साथ जो ज्ञान लगता है उसका मुख बाह्य में है। किधर है? उधर बाहर है। और आत्मा है तो अंतर तत्व स्वरूप है जिसको अंतर्मुखी ज्ञान में ही जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसलिए दोनों की दिशा परस्पर विरुद्ध है। इसलिए मन से कभी आत्मा जाना नहीं जाता है, क्योंकि मन का मुख इधर है और वहां आत्मा है ही नहीं। जहां मन का ज्ञान का मुख है बाहर, वहां तो सामने आत्मा है ही नहीं, तो आत्मा जानने में कहां से आएगा? वहां आत्मा का अभाव है। वही ज्ञान का क्षयोक्षम मति श्रुत का अंतर्मुख हो जाए तो आत्मा को विषय करता है। पांच इंद्रियों का वो ज्ञान है। ज्ञान पहले यहाँ से होता है, फिर मन का संबंध जुड़ता है उसके साथ। पहले यहाँ से होता है कि हमने देखा, ज्ञान मूल ज्ञान करावे से आत्मा करावे से। पण एने बे प्रकारनी अवस्था छे। अग्नि तो अग्नि छे, अपना गैस माथी झाल निकले छे, गरम होय छे, पण झाल ना बे रंग होय छे, ब्लू फ्लेम पण होय अने येलो फ्लेम पण होय। तो गैस वाला शू कहे छे कि ब्लू फ्लेम हशे तो बराबर तमारो गैस छे, ई अनाज ने पकावशे, येलो फ्लेम हशे तो वार लागशे अने बराबर नहीं पाके। तो अग्नि तो अग्नि छे, પણ એના અવસ્થાના પ્રકારો છે। એમ જ્ઞાન તો જ્ઞાન છે, પણ જ્ઞાનના બે પ્રકાર, સ્વભાવ અને વિભાવ। આપણને સ્વભાવથી લાભ છે, વિભાવથી લાભ નથી। વૈભાવિક જ્ઞાન મેં આત્મા નહીં આતા, ઇસલિયે મન મેરે જ્ઞાન મેં જો આત્મ સ્વરૂપ કા અનુભવ હુઆ હૈ વો મન નહીં જાનતા। ક્યો? કે મન કા વિષય હોઈ નહીં સકતા, मन का विषय वो हो ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत समझता है लेकिन उसमें कल्पना जुड़ जाती है। क्या दूषण है? कि उसमें कल्पना जुड़ जाती है। इसलिए मन द्वारा आत्मा का निश्चय सही रूप में नहीं होता, मन से भिन्न होकर के। આત્માના મનન ચિંતન ગમે એટલું કરો, આત્મા સુધી નહીં પહોંચાય। એની પ્રોસેસ બીજી છે। પ્રોસેસ એવી છે કે જ્ઞાન જે છે, જે જ્ઞાન મનથી પાંચ ઇન્દ્રિયથી પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યું છે, એ જ્ઞાનના બે અંગ છે। શું છે? બે અંગ છે, એક બાહ્યાંગ અને એક અંતરંગ। બાહ્યાંગ બાહ્ય પદાર્થો સાથે સંપર્ક કરે છે, પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠ્ઠા મન દ્વારા આત્માનું જે જ્ઞાનનું બાહ્ય અંગ છે એ બાહ્ય પદાર્થ સાથે સંપર્ક કરે છે અને સ્થૂળ છે એટલે સમજમાં પણ આવે છે, એને બાહ્ય અંગ કહે છે. અને આત્મામાં જે અંતરંગ જ્ઞાનનું જે જ્ઞાન અંગ અંતરંગ છે એ જ જ્ઞાનની સામાન્ય અવસ્થા છે, પેલી વિશેષ અવસ્થા છે, એ બદલતી જાય છે. આ સામાન્ય અવસ્થા છે, કોમન ફેક્ટર્સ, જ્ઞાનનો કોમન ફેક્ટર. ગણિતમાં બધા ભણે છે ને કોમન ફેક્ટર્સ, ભાઈ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, આમાં કોમન ફેક્ટર શું? તો કે 3, બાકી બધા અનકોમન છે. 3 શું છે? કે કોમન ફેક્ટર, બધામાં 3 છે. એમ જ્ઞાનની બધી વિશેષ અવસ્થાઓમાં સામાન્ય જ્ઞાન ચાલુ છે. સામાન્ય જ્ઞાનમાં કોઈ વિશેષતા નથી, એ સામાન્ય જ્ઞાન છે, તે સ્વભાવ અંગ છે, સ્વભાવ સદૃશ છે. એટલે જે મન છે ને એ વિશેષ જ્ઞાનની અવસ્થા છે. એના ઉપરનું લક્ષ્ય છોડી દઈને સામાન્ય જ્ઞાન ઉપર જે લક્ષ્ય વિશેષ જ્ઞાન કરે છે એ જ સામાન્ય જ્ઞાન ઉપર આવે ત્યારે એને પોતાનો સ્વભાવ ઓળખાય છે અથવા સમજાય છે. ત્યાં સુધી એને ઓળખાતો નથી અથવા સમજાતો નથી સ્વભાવ. પછી અનુભવમાં તો મન સાથે એનું એટેચમેન્ટ પૂરું થઈને, ડિટેચમેન્ટ થઈને એકદમ નિર્વિકલ્પ અનુભવ થાય છે ત્યારે આત્મા પોતાનો સ્વાનુભવ કરે છે અથવા આત્મજ્ઞાન કરે છે, જે ભવભ્રમણના નાશનું કારણ છે, અનંત જન્મ મરણના નાશનું કારણ છે. અમારે આપણે એ મોટી સમસ્યા પાછળ લાગી પડવાનું કે આ ભીંતડા સુધારવામાં લાગી પડવાનું? ભીંતડા સુધારવા એટલે કે દીવાલને કલર સારો, ફર્સ્ટક્લાસ કયો સારો લાગે એ કરો. આપણે જે મકાનમાં જઈએ કે મકાને બદલા કરીએ છીએ, શરીરે બદલા કરીએ છીએ, શરીરની ભીંત સુધારીએ, આ ભીંત છે આના ઉપર કલર મારો, અને કંપનીને આવે છે ને જુદા જુદા પ્રસાધન. ક્યાં સુધી ભીંતડા સુધારવાના કે જન્મ મરણ મટાડવાનો? શું કરવાનું છે? મોટી સમસ્યા કઈ છે? જન્મ મરણ મટાડવાનું. અને બહુ મોટી વાત એ છે કરવા જેવી એક, કે જીનેન્દ્ર પરમાત્માની નિધિ જે છે એણે આપણને આપી છે, બીજા કોઈને નથી આપી, પણ આપણે એના સાચા વારસદાર હોવાથી આપણને આપી છે. નિધિ એટલે ખજાનો. જીનેન્દ્ર પરમાત્માની નિધિ આપણને મળી છે, એમણે સમોસરણમાંથી ઉઠીને આપણને આપી છે. રાજ્યાભિષેક કરે ને રાજાના કુંવરને, ત્યારે જે એનો પિતા હોય એ પોતે એને રાજતિલક કરે પોતાના સિંહાસન ઉપર ઊભો થઈને, અને એને પોતાના સિંહાસન ઉપર બેસાડે. એમ જીનેન્દ્ર પરમાત્માએ સમોસરણના સિંહાસનમાંથી ઊભા થઈને તિલક કર્યું છે કે જો આ મારી નિધિ છે, હવે એની તને કિંમત કરતા આવડવી. અરે એની કિંમત કરવી છે કે આ બધા રાચ રચીલાની કિંમત કરવી છે? તું કે હવે શરીરની કિંમત કરવી છે, સામગ્રીની કિંમત કરવી છે, આબરુ કીર્તિની કિંમત કરવી છે, સમાજની કિંમત કરવી, કોની કિંમત તારે કરવી છે? સોના રૂપા ઘરેણા દાગીના હીરાની કિંમત કરવી છે? શેની કિંમત? આજે એમનો ઉપદેશ છે કે જગતમાં મુઠ્ઠીભર લોકોને મળે છે સંયોગ રૂપે, એમાંથી કોક કોક જીવ એની કિંમત કરે છે, એનું મૂલ્યાંકન કરે છે. મળનારામાં જેને સંયોગ થાય છે એના મોટાભાગના એનું ડિવેલ્યુએશન કરે છે. એને ઇવેલ્યુએટ કરતા નથી, ડિવેલ્યુએટ કરે છે. આપણે શું કરવું એટલું વિચારવાનું છે. જીનેશ્વરની પ્રદત્ત નિધિ તને હાથ લાગી છે, આત્માને કહેવાનો, પોતાના આત્માને કહેવાનું શું કે હે જીવ, તને જીનેશ્વર દેવની પ્રદત્ત નિધિ હાથ લાગી છે, હવે તું એનો ઉપયોગ કરી લે. જે સિંહાસને એ બેઠા છે, એ સિંહાસને એને તને બેસાડ્યા છે, પછી એથી વધારે શું જોઈએ જ્યારે એમ છે. જો એ કરવા જેવી વાત હતી, જ્યાં સુધી એની કિંમત નથી આવતી ને ત્યાં સુધી જીવ સંયોગનું શરીરનું લક્ષ છોડતો નથી, કુટુંબ પરિવારનું લક્ષ છોડતો નથી, સમાજનું લક્ષ છોડતો નથી, અને આવેલો ખજાનો ખોઈ બેસે છે. જીનેશ્વર દેવે આપેલી નિધિ ખોઈ બેસે છે. હા હા, આમ તો શું છે કે જે આમ તો એક જ પદાર્થના બે નામ છે. આત્મા શબ્દ આધ્યાત્મિક પ્રકરણમાં વપરાય છે, અને જીવ લૌકિક ભાષામાં પણ જીવ શબ્દ વપરાય છે. ભાઈ આનો જીવ આવો છે ને, આનો જીવ આવો છે, આ લોભી જીવ છે, આ અભિમાની જીવ છે, શું આ ક્લેશ કહી શકાય, કહી શકાય. પણ સામાન્ય રીતે બોલવાની પદ્ધતિ છે ને, એમાં શાસ્ત્રની અધ્યાત્મની પદ્ધતિમાં અધ્યાત્મ શબ્દો આધ્યાત્મિક શબ્દો વપરાય છે, લૌકિક ભાષામાં લૌકિક શબ્દો વપરાય છે. પણ જીવ શબ્દ અધ્યાત્મમાં નથી વપરાતો એવું નથી. સમયસારની 47 શક્તિઓનું વર્ણન જે કર્યું છે, આત્માની મૂળ શક્તિઓનું વર્ણન કર્યું છે, એમાં પહેલી શક્તિનું વર્ણન જીવત્વ શક્તિ છે. જે ચૈતન્ય પ્રાણથી અનાદિ અનંત સદાય જીવી રહ્યો છે તે જીવ છે. શું ચૈતન્ય મને જ્ઞાન અને દર્શન, જ્ઞાન અને દર્શન પ્રાણથી જે અનાદિ અનંત જીવી રહ્યો છે તે જીવ છે. એટલે તું નિગોદમાં પણ અનંતકાળ જીવ્યો, અત્યારે પણ જીવતો છું, અને ભવિષ્યમાં અનંતકાળ સુધી જીવતો જ રહેવાનો છું, કદી મરવાનો નથી. આ ભગવાને જીવતદાન આપ્યું કાયમ માટેનું, કે તું મરે જ નહીં. બોલ, આથી વધારે શું જોઈએ તારે? હા, અત્યારે જીવતદાન દઈ દીધું. જો ખબર પડે પોતાને કે મારે જીવત્વ શક્તિથી હું હંમેશા હંમેશા જીવવાનો છું, એને મરવાનો ભય થાય નહીં, પછી બીજો ભય તો થવાનો સવાલ નથી. એટલે ભયનું દુઃખ, સર્વ પ્રકારના ભયનું દુઃખ નાશ પામ્યું. આ તો પહેલે પગથિયે પાશેરામાં પહેલી પૂણી આવી ત્યાં આ ફાયદો થયો. પછીનો ફાયદો તો કહેવાયો નથી, કેમ કે વાણી છે એ ટૂંકી પડે છે, ઓછી પડે છે, પહોંચતી નથી, એવી ચીજ છે. આ જે વચનામૃત છે કૃપાળુદેવનું, એ બહુ પ્રસિદ્ધ વચનામૃત છે, અને આવી વાક્ય રચના પણ જવલ્લે જોવા મળે એવી એમની શબ્દ રચના ને વાક્યનું સંયોજન છે. ભાવ તો અંદર બહુ ભર્યો છે, એ વસ્તુ જ અચિંત્ય છે, ચિંતવનથી પાર છે. તને મન દ્વારા એટલું સમજાય તો એ અચિંત્ય દ્રવ્ય તું પોતે છો એવો હું, અચિંત્ય એટલે કેવો, ચિંતવનમાં પણ ન આવે એવો એટલે કેવો, એની તને કોઈ અપૂર્વ જિજ્ઞાસા જાગ્રત થવી. આત્માથી પોતે અનાદિનો અજાણ છે શું, અને આવા સત્પુરુષના શબ્દોથી જો જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય અને આત્માની ખોજ કરવા અંદરમાં નીકળે, દ્રવ્ય જ્ઞાન સામાન્યથી પકડે, ત્યાંથી જ્ઞાન સામાન્યથી એની ખોજ કરવા નીકળે, તો એની ખોજ કરવા નીકળતા 12 બધે પહેલા પોતે ખોવાઈ જાય, ન જડે ત્યાં સુધી. શું દશા થાય કે ગોતવા નીકળી પહેલા પોતે ખોવાઈ જાય, એવી અપૂર્વ જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય. એટલે એનો પત્તો લાગ્યા વગર રહે નહીં, અને એ પહેલા કોઈ દી પત્તો લાગે નહીં. આ વાત નક્કી સમજવી, નિશ્ચય સમજવી આ વાત, કે આવી અપૂર્વ જિજ્ઞાસા થયા વિના નિજ પરમાત્માનો એડ્રેસ પત્તો નહીં લાગે. અને આવી જિજ્ઞાસા આવી એટલે એ હંતાયેલો રહી શકશે નહીં, પછી એ છૂપો રહી શકશે નહીં, આ વાત ગેરેન્ટેડ છે. એવી જિજ્ઞાસામાં એક શબ્દથી પણ આ જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થવી જોઈએ, અચિંત્ય દ્રવ એટલા શબ્દથી આ જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. બહુ મોટો લાભ છે જિજ્ઞાસાથી, બહુ મોટો લાભ છે. અને એ જિજ્ઞાસાવાળાને જ્ઞાનીઓએ, આચાર્યોએ, જિનેન્દ્રોએ બહુ જ આવકાર્યો છે. સ્વરૂપની જિજ્ઞાસાવાળા જીવને બહુ મોટો આવકાર આપ્યો છે, હાઈલી રિસ્પોન્સ કર્યો છે એને. શું આવી જિજ્ઞાસામાં તું આવ્યો? હવે તને વાંધો નહીં આવે. અહીં સુધી રાખી વિશેષ લઈશું આવતી આ વિષય ઉપર.